ठीक है, तो चलिए खोलते हैं इस चैप्टर को। बड़े नंबर्स की दुनिया। आज हमारी कोशिश रहेगी कि इसकी जो मुख्य बातें हैं उन्हें थोड़ा दोहरा लें, ताकि बड़े नंबर्स को पढ़ना, लिखना, समझना वो सब आसान लगे।
बिल्कुल, और ये जरूरी भी है ना, क्योंकि ये बड़े नंबर्स तो हर जगह हैं। आप अखबार उठा लें, जनसंख्या के आंकड़े देखें, या फिर अंतरिक्ष की दूरियां, इंटरनेट डेटा, सब जगह।
सही कहा, मतलब रोज दिखते हैं।
हाँ।
अच्छा, तो इस चैप्टर में हमने दो खास तरह के सिस्टम्स देखे थे, एक तो अपना इंडियन सिस्टम,
हाँ, लाख करोड़ वाला,
और दूसरा वो इंटरनेशनल सिस्टम जिसमें मिलियंस बिलियंस चलते हैं। यहीं पर थोड़ा मतलब ध्यान देना पड़ता है ना?
हाँ, शुरुआत में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, पर चैप्टर ने समझाया है। जैसे इंडियन सिस्टम में हम लैक्स क्रोज बोलते हैं, और कॉमा लगाने का भी एक तरीका है, पहले तीन अंकों के बाद,
हाँ
फिर हर दो अंकों के बाद।
हाँ थ्री फिर टू फिर टू। जैसे 5 करोड़ लिखना हो तो 5,000,000,000।
बिल्कुल, 5 करोड़। और इंटरनेशनल सिस्टम,
उसमें मिलियंस बिलियंस,
और कॉमा वो अलग था शायद।
हाँ उसमें नियम सीधा है, हर 3 अंकों के बाद कॉमा लगता है। तो जैसे अगर 50 मिलियन लिखना है तो वो होगा 50,000,000, यानी 50,000,000।
अच्छा,
देखने में छोटा सा फर्क है, पर जब आप कोई ग्लोबल रिपोर्ट देख रहे हों या मतलब बाहर की खबरें पढ़ रहे हों
हाँ, तब ये जानना जरूरी हो जाता है।
कि भाई मिलियन लिखा है या करोड़।
बिल्कुल, ये कॉमा ही बता देता है कि कौन सा सिस्टम इस्तेमाल हो रहा है।
ये बात तो है। अच्छा, इसके अलावा वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, इसकी भी बात थी, ये क्या था जरा फिर से बताएंगे? प्लेस वैल्यू में मुझे हमेशा थोड़ी गड़बड़ लगती थी।
हाँ हाँ जरूर। देखिए, फेस वैल्यू तो बहुत आसान है, किसी अंक का जो अपना मान है वो। जैसे 583 में 8 का फेस वैल्यू तो 8 ही रहेगा,
ठीक है।
लेकिन प्लेस वैल्यू वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अंक किस जगह पर है। उसी 583 में 8 दहाई की जगह पर है तो उसका प्लेस वैल्यू हुआ 80,
अच्छा,
और 5 सैकड़ा की जगह पर है तो उसका प्लेस वैल्यू हुआ 500। यही चीज बड़े नंबर्स को समझने में मदद करती है कि हर अंक की कीमत उसकी पोजीशन से तय होती है।
अच्छा अब समझा। तो मतलब अगर लिखा है 7 करोड़ तो इसमें 7 का प्लेस वैल्यू 7 करोड़ है,
बिल्कुल सही।
और वो नंबर्स को एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना वो भी इसी से जुड़ा है फिर।
हाँ हाँ बिल्कुल, एक्सपैंडेड फॉर्म में हम करते क्या है, हम नंबर को उसके अंकों के प्लेस वैल्यूज के जोड़ के रूप में लिख देते हैं। जैसे 583 को लिख दिया 500+80+3। बड़े नंबर्स के लिए ये उनके स्ट्रक्चर को दिखाता है।
समझ गया। और फिर वो तुलना करना भी था, कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा, और एक और चीज थी राउंडिंग करके अनुमान लगाना। ये राउंडिंग वाला फंडा तो शायद रोज काम आता होगा।
अरे बहुत ज्यादा। राउंडिंग का मतलब क्या है? किसी नंबर को उसके सबसे पास वाली आसान संख्या में बदल देना, जैसे 10, 100, 1000।
हाँ हाँ
सोचिए, कोई चीज है 9,875 रुपए की, हिसाब लगाने में मुश्किल होगी।
बिल्कुल,
तो हम अंदाजा लगा लेते हैं, भाई ये लगभग 10,000 की है।
हाँ करते हैं सर।
बिल्कुल। या खबरों में सुनते हैं सरकार ने योजना पर लगभग 500 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, तो वो असल में राउंडिंग ही तो है। बड़े मुश्किल दिखने वाले आंकड़ों को समझने लायक बनाता है।
तो कुल मिलाके ये चैप्टर में सिखाता है कि बड़े नंबर से डरने की जरूरत नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करने का समझने का एक तरीका है, चाहे वो इंडियन सिस्टम हो या इंटरनेशनल।
निश्चित रूप से, प्लेस वैल्यू से लेकर राउंडिंग तक हर कॉन्सेप्ट का अपना एक प्रैक्टिकल यूज है।
हाँ, ये सिर्फ मतलब स्कूल के गणित तक ही नहीं है।
बिल्कुल नहीं, ये तो रोजमर्रा की जिंदगी का स्किल है। आप कोई बजट बना रहे हो, या घर का हिसाब रख रहे हो, या बस दुनिया में क्या चल रहा है ये समझना हो, इन बड़े नंबर्स को सही से पढ़ना, उनका अंदाजा लगाना, ये सब बहुत काम आता है।
बिल्कुल, अब वो लाख हो या मिलियन, करोड़ हो या बिलियन, उतने डरावने नहीं लगते, एक तरीका है उन्हें समझने का।
सही कहा। और यहाँ एक एक दिलचस्प बात सोचने की है। आज हम बिलियंस ट्रिलियंस तक की बात करते हैं, पर जिस तेजी से डेटा बढ़ रहा है, जानकारी बढ़ रही है, क्या लगता है भविष्य में हमें इनसे भी बड़ी संख्याओं को समझने के लिए, उन्हें नाम देने के लिए शायद नए सिस्टम्स या नए शब्दों की जरूरत पड़ेगी?
सोचने वाली बात है।
हाँ, मतलब ट्रिलियन के बाद क्या, और उसे हम कैसे समझेंगे, कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये विचार करने लायक प्रश्न है।